या अली मदद। अलवाइज राय अबू अली मिशनरी, वाइज नंबर 815,
27th of December, year 2005, my wife in Lahore, Pakistan. Ya Ali Madad. Dindar. मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, गला खास तौर पे खराब है, इसलिए आप माफ करना, कभी कभी मैं घास ही खाऊंगा। लाहौर की जमात को मिलके तकरीबन 7-8 बरस हो गए, मैं बहुत खुश हुआ हूँ। आपको मेरा सलाम और याली मदद और मेरी दुआएं के दिनों दुनिया में सुखी आबाद बना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नास कद जाकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम وأنزلنا عليكم نورا مبينا. مولانا حضرت امام پر صلوات پڑھیے، اللهم صل على محمد وعلى محمد. اے مومنو، میں نے گنان کا پاٹھ جان بوجھ کے نہیں بولا، کیونکہ مجھے اس آیت سے تطابق کرنا ہے. اللہ فرماتا ہے، اے انسانوں، یہاں مومنین کو ایڈریس نہیں کیا خدا نے، نہ مسلمین کو ایڈریس کیا ہے. اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں، اس میں ہندو، مسلمان، کرسچن، یہودی سب آ گئے، اور وہ بھی آ گئے کہ جو خدا کو نہیں مانتے. ہم نے بھیجا ہے تمہاری طرف ظاہر پروف، پروف کہتے ہیں اس ثبوت، اور ہم نے نازل کیا ہے اپنے نور کو کہ جو آنکھوں سے دکھے ایسا نور. گنان کا جو پارٹ مجھے بولنا تھا وہ یہ تھا کہ کہور جیو تمہیں کس کارن آیا. اس الدین ہم کو پوچھتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم دنیا میں پیدا کیوں ہوئے، کیا وجہ ہے؟ پیدا ہونے کی خدا تعالی نے کوئی خاص وجہ بتائی؟ کیا وہ وجہ تم کو معلوم ہے؟ کیونکہ اللہ تعالی خود کہتا ہے کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو، جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور کوئی وجہ نہیں. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے جنات کو اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا سوائے اس کے کہ میری عبادت کریں. اب یہ زندگی کا مقصد ہے. کہور جیو تمہیں کس کارن آیا، نہ کی صاحب دی سیوا. کیا ہم میں سے آج ادھر اس وقت خدا کے فضل و کرم سے جماعت خانہ آدھے سے زیادہ بھرا ہے؟ آپ سب لوگ عبادت کرتے ہو، دعا پڑھتے ہو، جماعت خانے آتے ہو، आपने कभी बैठ के ये सोचा कि इस मजहब में से आपको क्या मिला? ऐ मोमिनो, कोई आदमी कारोबार करता है उसमें से उसको नफा मिलता है। 20 बरस के हैं, 24 बरस के हैं, 40 बरस के हैं, 50 बरस के हैं, 70-80 बरस के आप सब बैठे हो, आपको इस माली मजहब में कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। मैं कैसे कह सकता हूं कुछ नहीं मिला, क्योंकि जो आदमी के खीसे भरे होते हैं उसके मुंह पर रौनक होती है, जिसके खीसे खाली होते हैं वो मुंह लटकाए उदास और फिक्र में रहता है। मजहब का जो नूर है वो जब दिल में दाखिल होता है तो सिर से पांव तक उसकी सारी बॉडी में से एक किस्म की खुशी, एक किस्म का सुकून, एक किस्म की राहत और तसल्ली होती है। और मैंने ये भी सुना है कि अपने मजहब में से कुछ लोग निकल गए। देखा, मैंने जो सवाल किया कि आपको इस मजहब में से क्या मिला, उनको कुछ ना मिला, दिल का इत्मीनान ना मिला, खुशी ना मिली, मजहब छोड़ के चले गए। फवा, लेकिन हम लोग अभी बैठे हैं। आप मोमिन हो, मौला के मुरीद हो, मौला के रूहानी बच्चे हो, खुदा ताला ने आपको सेहत दी है, थोड़ा पैसा भी दिया है, मकान दिए है, खाना दिया है, फैमिलियां बनाई है। ऐ दीनदारों, कभी न कभी महीने में एक दफा आराम से बैठ के सोचा करो कि मैं दुनिया में क्यों आया, दुनिया में आने की गरज क्या थी। और एक और बात सोचनी चाहिए, क्या मर्जी से पैदा हुआ हूं? नहीं, कोई आदमी अपनी मर्जी से पैदा नहीं होता, और जब मरता है तो भी उसकी मर्जी नहीं चलती। अब मुझे बताओ कि जिंदगी की शुरू और रात से मौत तक इस जिंदगी के अंदर 25-50-100 बरस निकले, आगाज मेरी मर्जी से नहीं, मौत मेरी मर्जी से नहीं, तो इस दरमियान मेरी मर्जी है? इंसान को खुदा ताला ने सोच दी है, अक्ल दी है, सोचने की कुव्वत दी है। जगह जगह अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि तुम सोचो, मेरी दुनिया में फिरो और सोचो कि मैंने ऐसी कोई चीज बनाई है कि जिसमें तुम्हें ऐब नजर आता है। यानी खुदा ये कहना चाहता है कि मैं बेऐब हूं, खुदा ये कहना चाहता है कि मैंने जो कुछ बनाया है सोच समझ के बनाया और कोई गलती नहीं की। इसी तरह से मैंने तुमको बनाया है, अल्लाह कहता है, तो मैंने तुम्हें फजूल नहीं बनाया। और ये लफ्ज कुरान के हैं कि तुम सोचो मैंने तुमको इब्स नहीं बनाया, फजूल नहीं बनाया, युगी नहीं बनाया, तुम्हारी खलकत में तुम्हें पैदा करने के अंदर मेरा एक मकसद है, अल्लाह कहता है। वो मकसद क्या है? वो मकसद है उसकी इबादत। भला उसको इबादत की जरूरत है? नहीं दीनदारों, हम उसकी इबादत करें न करें, वो परवरदिगार बेनियाज है और उसे किसी चीज की मोहताजी नहीं, परवाह नहीं। फिर उसने ये बनाया सब कुछ तो क्यों बनाया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सबसे पहले खुदा ने मेरे नूर को अपने नूर से जुदा किया और फिर मेरे नूर से सारी खलकत बनाई। लेकिन क्यों? मैं आज आपको हकीकतें बता रहा हूं ताकि आप इन बातों के ऊपर गौर करो और सोचो। खुदा ने खलकत क्यों बनाई? अल्लाह ताला रब है। रब कहते हैं पालने वाले को, तो अगर कोई है ही नहीं तो पाले किसको? खुदा रहीम है, किसी ने भूल की ही नहीं है तो रहम कहां करे? तो खुदा की जितनी सिफतें हैं उन सिफतों का इजहार करने के लिए खुदा ने खलकत बनाई, इजहार करने के लिए, क्योंकि उसकी खलकत होवे तो वो रहम करे, अपनी रबूबियत से पाले। भूल करो तो गुनाह करो वो बख्श दे रहे। खुदा ताला की ये सिफतें जाहिर करने के लिए खुदा ने खलकत बनाई। अब खलकत तो बना दी, अल्लाह ताला कुरान में फरमाया कि मैंने क्रिएशन की और फिर इसकी मैनेजमेंट मैंने ऑफर की पहाड़ों को, पानी को, चांद को, सूरज को, समुंदर को, मगर किसी ने इसकी मैनेजमेंट कबूल नहीं की। यानी खुदा की क्रिएशन को मैनेज करना। मैं आपको अभी कहूंगा कि क्या मैनेजमेंट का मतलब क्या है। खुदा की क्रिएशन को मैनेज करने के लिए खुदा ने बहुत सी ऑफर की, लेकिन पहाड़ों ने, दरख्तों ने, समुंदर ने, हवा ने, चांद ने, सूरज ने, किसी ने कबूल नहीं किया, क्योंकि खुदा की क्रिएशन को मैनेज करना इजी नहीं। और उन्होंने सब ने कहा हम इस लायक नहीं है। ये सवाल और जवाब कुरान शरीफ में से निकलता। अल्लाह फरमाया कि मैंने जब इंसान को ये ऑफर की तो उसने जल्दी से ग्रैब कर लिया, क्योंकि इंसान बड़ा जल्दबाज है। एक जगह खुदा ने फरमाया कि मेरी सारी क्रिएशन में, तमाम मखलूकात में इंसान सबसे बड़ा झगड़ालू है, झगड़ा करता है, मतलब कि हर चीज को कबूल नहीं करता। खुदा ताला ने ये तमाम चीजें, ये सिफतें माइनस और प्लस की जो है ये इसलिए रखी है ताकि उसका इम्तिहान हो सके। मैनेजर बना दिया, लेकिन उसने मैनेजमेंट बराबर की कि नहीं की? अभी मैनेजमेंट क्या है? पहली चीज तो यह है कि खुदा ताला की मखलूकात जो है छोटी हालत से बड़ी हालत तक तमाम चीजों को अच्छी तरह से संभाल के रखा जाए ताकि उसमें बिगाड़ और बर्बादी पैदा ना हो। मिसाल के तौर पे एक छोटा सा बगीचा है, उसमें पौधे हैं फूलों के, फलदार दरख्त हैं, सायादार दरख्त हैं। अगर इनको पानी न दिया गया तो ये सूख जाएंगे, मर जाएंगे। तो इंसान की मैनेजमेंट ये है कि जो खुदा ताला ने ये सब चीजें बनाई है वो कायम रहे और उनको अच्छी हालत में रखा जाए। आज इस दुनिया के अंदर तकरीबन 60 वर्ष पहले यानी 1945 में जब ये लड़ाई खत्म हुई और यूनाइटेड नेशंस ने ये सारा एग्रीमेंट किया, सुलह सम्प किया, जर्मनी इटली हार गए, अमेरिका यूरोप वाले ब्रिटिश वगैरह जीत गए, यूनाइटेड नेशंस बनी 1945 में, तो उस वक्त जो ह्यूमन चार्टर बनाया गया उसमें ये चीज थी कि ऐसा काम न किया जाए कि दुनिया के ऊपर जो हरियावल है यानी एग्रीकल्चर है, जंगल है, ये बर्बाद न किया जाए। मैंने जब ये चार्टर पढ़ा तो मैं हंसा इसलिए कि आज इन्होंने 1945 के अंदर ये चार्टर बनाया, दुनिया की तमाम गवर्नमेंटों ने मिलकर, मगर 1400 वर्ष पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चार्टर बनाया था। नबी करीम फरमाया दरख्तों को मत काटो, एक हुजूर एक दिन जा रहे थे, कुछ असहाब साथ थे, तो एक आदमी दरख्त के ऊपर चढ़ के उसको काट रहा था, नबी नजदीक आके खड़े हुए, वो छलांग मार के नीचे उतरा, नबी को सलाम किया, नबी कहते हैं क्या करते हो, या नबी मैं दरख्त काट रहा हूं, क्यों, कि इसके पत्ते निकलते हैं गंध बहुत होता है। हुजूर फरमाया ए नादान, ये दरख्त लोगों की खिदमत के लिए है, अरबस्तान की गर्मी में ये साया देता है, मुसाफिर आके इसके नीचे सस्ताते हैं, ठंडक मिलती है, मत काटो, छोड़ दिया उसने। रसूल अकरम का यह कॉमन फरमान है, बहुत सख्त जरूरत के सिवा दरख्त मत काटो, अगर फल नहीं देता तो साया देता है, और जो पत्ते होते हैं सूखे होते हैं, हवा आती है उड़ा ले जाती है। ये जो आज की साइंसदान जमीन के माहौल को स्टडी कर रहे हैं कि यहां से तकरीबन 150 से 200 मील ऊपर जो ओजोन की लेयर है वो फट रही है, और फटने की वजह कार्बन डाइऑक्साइड और वो गैसेस के जो आसमान पे जाके इस लेयर को तोड़ देती है। खुदा ने एक हिफाजती लेयर बनाई है, कवर बनाया है, इसको ओजोन कहा। सूरज के अंदर जो शुआएं निकलती हैं, इन शुआओं में एक अल्ट्रा वायलेट रेज है, खुदा ताला ने पर्दा डाल दिया ताकि ये रेज नीचे न आवे, ये रेज बहुत खतरनाक है, कातिल है, इनकी वजह से रेज की वजह से फ्रूट खराब होता है, अनाज खराब होता है, जानवरों को और इंसानों को स्किन कैंसर होता है, हड्डियां पतली होती हैं, और बहुत किस्म की बीमारियां पैदा होती हैं। खुदा की बनाई हुई इस ओजोन की लेयर को, कवर को हम तोड़ रहे हैं। कैसे तोड़ रहे हैं? आज दुनिया में हर रोज सारी दुनिया का अंदाजा यह है कि 1 मिलियन कारें हर रोज ज्यादा हो रही है, कारों का धुआं, स्कूटर का धुआं, हमारे रेफ्रिजरेटर में से निकली हुई गैसेस और गंध वगैरह के अंदर से निकली हुई गैसेस ये ओजोन की लेयर को तोड़ रहे हैं। मैं आपको साइंस सिखाना नहीं चाहता, मैं मजहब सिखाना चाहता हूं। और यह चीज मजहब के अंदर है कि खुदा की बनाई हुई चीजों को बिगाड़ो मत। बेफायदा जानवरों को कत्ल करना या जानवरों को भूखा मारना, उनका शिकार करके महज अपनी खुशी की खातिर शेर को मार दिया, हरण को मार दिया, खुदा को ना पसंद है। सिवाय इसके के आदमियों को नुकसान पहुंचाते हो या जानवरों को नुकसान पहुंचाते हैं तो मारो। नबी फरमाया मूजी को मार डालो। मूजी कहते हैं दुख देने वाले को। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये खुदा ताला की खुदाई की मैनेजमेंट है। पानी मत बिगाड़ो, पानी वेस्ट ना करो। वेस्ट करना, कोई भी चीज का नुकसान करना जरूरत के बगैर रसूलुल्लाह की जिंदगी पढ़ के हैरान होते हैं। हुजूर खाना खाते थे, चावल का अगर एक दाना जमीन पे गिर गया तो वो उठा के खा लेते थे। और हुजूर फरमाते थे कि इतना लो कि तुम खा सको। आज हमारी महफिलों के अंदर, हमारे डिनर और लंचेस के अंदर हम इतनी प्लेट भर लेते हैं कि खा नहीं सकते, फिर आधा वो वेस्ट होता है। वो अल्लाह और नबी को ये चीज पसंद नहीं। महज ये सिर्फ खाने ही की बात नहीं, फजूल खर्ची हर हालत के अंदर नबी को अल्लाह को पसंद नहीं। इन अल्लाह ला युहिब्बुल मुसरिफीन। तहकीक, खुदा जो है वो फजूल खर्च करने वालों को पसंद नहीं करता। अब यहां फजूल खर्च का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं है। ये जो हम सांस लेते हैं ये भी कीमती चीज है। आपको मालूम है हमारा सांस है वो जान है। हमारे सांस है वो जान है, लेकिन हम अपने सांस बर्बाद करते हैं। वो लोग के जो लेजी हैं, काहिल हैं, सुस्त हैं, काम नहीं करते, वो अपने सांसों को वेस्ट करते हैं। ऐ मोमिनों, अगर मैं अपने इस्माइली मजहब की बात करूं तो गुरपीर हसन कबीर दिन माँ बाप कहते हैं दसवन दो, हम लोग 800 रुपए में से 100 रुपए दे दिए, हमने समझा दसवन दे दिए, लेकिन ये काफी नहीं। पीर हसन कबीर दिन कहते हैं कि सारे दिन के अंदर 21,600 आदमी सांस लेता है, 21,600 मिनट का हिसाब करो तो एक मिनट में 15 सांस लेता है। फिर हसन कबीर दिन कहते हैं ये सांस खुदा ने तुम्हें बख्शिश दी है, सांस में से दसवंत निकालो। 24 घंटा जो दिए गए उसमें से 3 घंटे मौला को दसवन दो। अपने सांसों में, अपनी जिंदगी में से 3 घंटे हर रोज उसको दसवन देनी चाहिए। वो दसवन क्या है? दुआ पढ़ते हैं, जमात खाने आते हैं, इबादत करते हैं, जमात की खिदमत करते हैं। इसके अलावा हम तस्बीहां निकालते हैं। तो ऐ मोमिनों, अपनी जिंदगी की दसवंत यह है कि हम 3 घंटे मजहबी हालात में, खुदा की इबादत में, खुदा के ख्यालों में, खुदा की खिदमत में गुजारें। तो इस तरह अगर हम अपने मजहब के ऊपर बराबर अमल करें कि जैसा हमने अपने रिज़्क में से 10% दी, जान में से भी 10% दी। यहां मेरा मकसद कहने का यह था कि हमारी जिंदगी फजूल नहीं है। एक दिन जो जाता है वो हमारी लाइफ में से कम होता है, और हमें ये सोचना चाहिए कि मेरी मौत नजदीक आ रही है। जवानी में इंसानों को यह ख्याल ही नहीं होता, अपनी जवानी की मस्ती में रहते हैं। लेकिन वो लोग के जो 50 के ऊपर हो गए, कम से कम उनको तो ये समझना चाहिए कि मेरे 50 बरस निकल गए हैं, दूसरे 50 बरस हैं कि नहीं। हो सकता है 50 नहीं 40 हो गए, हो सकता है 30 हो गए। तो उसके लिए हमने क्या आकबत सोची? अल्लाह कहता है कि मैंने अपनी मैनेजमेंट इंसान को दी है ताकि ये मेरी मैनेजमेंट, मेरी क्रिएशन जारी रहे। बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, शादी करता है, उसके घर बच्चा होता है, तो खुदा इस चीज को जारी रखता है। पैदाइश है, मौत है, पैदाइश है, मौत है, इस तरह खुदा की दुनिया चल रही है। बिल्कुल इसी तरह से खुदा की दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, इन तमाम चीजों को दुनिया में मेंटेन करना चाहिए। और इसके अंदर इंसान जब भी उसको खुदा थोड़ा आराम देता है, दो पैसे देता है, तो वह मगरूर हो जाता है, फजूल खर्च बन जाता है। फजूल खर्ची की बात मैं कर रहा था कि सिर्फ पैसे की फजूल खर्ची नहीं, कपड़ों की भी फजूल खर्ची। बस मालदार आदमी है, नया कपड़ा लिया, दो चार दफा पहना, फेंक दिया, ये फजूल खर्ची है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। 1945 में मौलाना सुल्तान मोहम्मद शहजादा सल्लल्लाहु अलैहि बम्बई अक्टूबर की 28 तारीख को आ गए थे, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च की 11 तारीख तक ठहरे, क्योंकि मार्च की 10 तारीख को डायमंड जुबली थी। ये मैं बॉम्बे की बात कर रहा हूं। तो इमाम 5 महीने बम्बई में रहे, थोड़ा बाहर गए थे 15 दिन के लिए, जमातों की मुलाकात की, काठियावाड़ में, गुजरात में। तो हर रोज 40 मेहमानियां होती थी हसनाबाद में। उस जमाने के अंदर मेहमानी का तरीका यह था कि ऐसा पाठ होता था, उस पर मेहमानी के फ्रूट वगैरह जो कुछ भी होवे, कुर्सी पड़ी होवे और सब जिसकी मेहमानी होवे, वो ऐसा घेरा डाल के पाठ के इर्द गिर्द बैठे होंगे, तो माँ बाप आके बैठे, ऐसा लगे कि उस फैमिली के घर पे मौला गए हैं। इस तरह सब फैमिलियों ने अपनी अपनी मेहमानियां रखी, और मौला तकरीबन हर रोज किफायत शुवारी के फरमान करते थे, फजूल खर्च मत करो, फजूल खर्च मत करो। लड़ाई का जमाना था और हर चीज महंगी हो रही थी। हाँ सॉरी, लड़ाई खत्म हो चुकी थी मगर हर चीज महंगी हो रही थी। लड़ाई खत्म हुई अगस्त की 5 तारीख को 1945 में, और ये बात करता हूं 45 के आखिर में। चीजें सख्त महंगी थी। कासम अली मंजी नथू हमारे दरखाना के मुखी थे, तो मंजी नथू भाई एंड कंपनी करोड़पति आदमी थे, पेट्रोल का बिजनेस था, बड़े मालदार थे, 200 आदमी उनकी ऑफिस में काम करते थे, इस पे 80-85 इस्माइली थे। तो ये जो 80-85 इस्माइली थे, इन्होंने मिलके मेहमानी रखी, डायमंड जुबली का टाइम था, मौला आके बैठे, सबको देख रहा है, नोट किया, मुस्कराए, दुआ शीश दी, थोड़े फरमान किए। दूर एक लड़का बैठा था, 3-4 लाइनों के बाद, चाइना सिल्क का सूट, मरून रंग की टाई, जवान बच्चा था, 22 बरस का, खूबसूरत था। अभी चाइना सिल्क जो लड़ाई से पहले 9 आने गज मिलता था, उसके 200 रुपए गज हुए, क्योंकि चाइना से आता था। और सुल्तान मोहम्मद शहजादा खुद चाइना सिल्क पहनते थे, डबल ब्रेस्ट का सूट था। मौला ने उसको पूछा, तुमने ये सूट सिलाया, बहुत अच्छा है, खड़ा हुआ। सब बोला नीचे, नजदीक आया, बहुत अच्छा सूट है, खुश हो गया। तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? 85 रुपए। वो जमाने में 85 रुपए बहुत थे, और वो नया नया रिक्रूट था। तुमने ये सूट कितने में सिलाया? खुदावंद 300-350 रुपए। ऐसा 85 रुपए तनख्वाह और ऐसा कीमती सूट चोरी करते हो? नहीं नहीं नहीं, नहीं खुदावंद में चोरी नहीं करता, मैंने पैसे जमा करके ये सूट सिलाया, माँ बाप के पास रहता। मौलाना सुल्तान मोहम्मद से फरमाया, ऐसी छोटी तनख्वाह में इतना महंगा सूट पहनने की क्या जरूरत थी? ये कह के मौला ने अपनी टाई हटा के बटन खोले कमीज के, और ऐसा करके दिखाया। मैं इधर बैठा था, मैंने खुद ऐसा देखा, तो मौला हमको दिखाते थे कि अंदर जो सिंगलेट थी बनैन, उसमें होल्स थे, फटी हुई थी बनैन, फटी हुई थी। मौला कहते हैं कि देखो ये कमीज के अंदर है, कोई को पता नहीं कि मैंने फटी हुई बनैन पहनी है। जब तक तुम किसी चीज को इस्तेमाल कर सकते हो, फेंको मत। अब ये फजूल खर्ची क्यों इतना वजन दिया गया कुरान और फरमानों में कि फजूल खर्च मत करो? पहली चीज तो यह है कि जो फजूल खर्च आदमी होता है, वो अपनी जिंदगी में बहुत सी चीजें फेंक देता है, वेस्ट करता है। अब ये फजूल खर्ची जो है, ये खुदा ताला की नेचर के ऊपर पहुंचता है, दरख्तों पे, फलों पे, खाने में, अनाज पे, क्योंकि हम थोड़ा खाते हैं बाकी फेंक देते हैं। ये सारी चीजें हमारे मजहब के साथ ताल्लुक रखती हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर अगर हम दुनिया में रह के ऐशो ऐशरत में पड़ गए और खुदा की बनाई हुई चीजों को फजूल फेंक दिया, तो हमारी नेचर हो जाएगी, हमारी आदत हो जाएगी कि फिर हम अपनी जिंदगी को फजूल खर्च करते रहेंगे। सो गए, इबादत नहीं की, सिनेमा चले गए, जमात खाने नहीं आए, कोई की शादी में चले गए, जमात खाने नहीं आए, इस तरह आदतें बिगड़ती हैं और हमारी रूहानी जिंदगी को नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा क्या होता है कि जो जो रूहानियत घटती जाती है, जो जो मजहब की मोहब्बत घटती जाती है, जैसे जैसे मोहब्बत की प्रैक्टिस घट जाती है, उसके अंदर शैतान जागता है, मगरूर हो जाता है, लालची बन जाता है, खुद गर्ज बन जाता है, उसके अंदर गुस्सा आ जाता है, ये तमाम बदियां बुराइयां उसमें दाखिल होने लगती हैं। जब इंसान के अंदर खुदा की बख्शी हुई रूहानियत घट जाती है। ऐ मोमिनो, मैंने आपको साइंटिफिक तरीके से कुरान शरीफ के हिसाब से गिनान और फरमानों रसूलुल्लाह की हदीसें सुना के ये चीजें सुनाई हैं कि हमको अपनी जिंदगी पे गौर करना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूं, क्या मेरी कोई से दुश्मनी है, क्या मेरे अंदर बदियां बुराइयां हैं कि जो मेरी फैमिली को खराब करे। आज की दुनिया के अंदर हमारी फैमिली बिगड़ रही है। अब देखो, हमारी जो फैमिली लाइफ है वो भी हमारे मजहब के साथ ताल्लुक रखती है। हमारी जिंदगी का हर पहलू जो है इस्लाम ने उसके ऊपर नुक्ताचीनी की है, क्योंकि खुदा ताला ने इस्लाम को मुकम्मल मजहब बना के भेजा है। हमारी जमात के अंदर हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, अफ्रीका में और सबसे ज्यादा कनाडा, अमेरिका में, यूरोप में जमातों की जो फैमिली लाइफ है वो बिगड़ रही है। मैं सारी जिंदगी दुनिया में घूमा हूं और आज मैं 86 साल की उम्र में भी घूम रहा हूं और वाइजें सुनाता हूं, ताकि मेरी बात सुन के एक आदमी भी कभी सुधर जाए तो बहुत बड़ी बात है। हमारी फैमिली लाइफ बिगड़ रही है, यह चीज हमारे मजहब को नुकसान करती है। हम दुनियादारी में फंस के सिर्फ दुनिया ही की बातों के अंदर रहे हैं, हम आखिरत में देखते नहीं। वो लोग के जो अपना मजहब छोड़ गए, दूसरी तरफ जा रहे हैं, कई लोग हैं बाहर शादियां करते हैं, एक इस्माइली है, दूसरा नॉन इस्माइली है, तो इस बात का हमें ख्याल करना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या होंगे। मर्द ने औरत ने एक दूसरे को पसंद करके शादी कर ली, एक इस्माइली है, दूसरा इस्माइली नहीं है। अगर वो दूसरा भी इस्माइली बन जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन जो ना बने तो बच्चों का क्या, औलाद का क्या, औलाद कंफ्यूज हो जाएगी, न इस तरफ के न उस तरफ के। इसी तरह से ऐसी बहुत सी चीजें जमातों में पैदा होती हैं कि अपना मजहब छोड़ के चले जाते हैं, काउंसिल से, मुखी कमाड़िया से या कोई और बुजुर्ग से जमात के अंदर तनाजा हो गया तो जमात खाना छोड़ देते हैं। ये बातें नहीं होनी चाहिए। हमारे मजहब का जो स्ट्रक्चर है, निजाम है, वो इतनी अच्छी चीज है कि आज सारी दुनिया में जितनी भी कौमें हैं उनके अंदर ऐसा निजाम कहीं नहीं। और कई दूसरे कौम के आदमी हमारे जमाती निजाम को बहुत तारीफ से देखते हैं। कनाडा के अंदर खसूसी तौर पे मल्टीकल्चरल सोसाइटी है, हर कौम का आदमी, हर मजहब का आदमी उसको कनाडा में आजादी है, और ये मल्टीकल्चरलिज्म बहुत अच्छी चीज है। हर जमात अपने कल्चर के ऊपर चलते हैं। आज हमारी इस्माइली जमात की इतनी बड़ी इज्जत है कि पार्लियामेंट के अंदर कुछ एक दो ऐसे मिनिस्टर हैं कि जब वो शुरू करते हैं कोई चीज को तो कहते हैं याली मदद, कैनेडियन पार्लियामेंट में याली मदद होती है। और हमारी जमात की जितनी इज्जत है और कोई दूसरी कौम की इज्जत नहीं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा निजाम, हमारी ऑर्गेनाइजेशन गैरों की आंखों में एक किस्म की चमक पैदा करते हैं। 7-8 वर्ष पहले ये पोप कनाडा आया टोरंटो में, गवर्नमेंट ने उसको बुलाया था, गवर्नमेंट ने रिसीव किया। वो एक्सपेक्ट करते थे कि 8 लाख आदमी आएंगे इसको देखने के लिए, बहुत बड़ा इंतजाम किया गया। अभी इतने आदमी जो बैठे हुए तो लोग जो मोटरों में या बसों में आवे उनको तो कितना चलना पड़े अपनी जगह पे जाने के लिए, और ट्रैफिक का इंतजाम भी अच्छा ना हो सका। लेकिन उसके पहले हाजर इमाम आए थे और उन्होंने हमारे वॉलंटियर्स का जब निजाम देखा तो उस वक्त जब ये पोप आने वाला था तो हायर अथॉरिटी ने अपनी जमात को, काउंसिल को रिक्वेस्ट की कि आप अपने आगा खान कोर जो है वॉलंटियर कोर उनको भेजो कि वो हमारी मदद करे ट्रैफिक के अंदर। ऐ मोमिनो, हमारे 300 से 400 वॉलंटियर्स उधर गए, आगा खान के बैजेस लगाए हैं। जो लोग उतरते थे अपनी अपनी बसों वगैरह से, अपने वॉलंटियर तकरीबन 100 गाड़ियां खुद की ले गए थे और बसें से लेके जहां वो मीटिंग होती थी वहां तक ये अपनी गाड़ियों में लोगों को उधर ले जाके रखते थे। गवर्नमेंट इतनी खुश हुई कि अगर आगा खान वॉलंटियर्स न होते तो एक केओस हो जाता। और उन्होंने, मिनिस्ट्री ने जब खत लिखा और ये खत की कॉपी मौला को भेजी गई तो मौला इतना खुश हुआ। हमारी जमात वेल ऑर्गेनाइज्ड जमात है क्योंकि हमारा इमाम हमारे सिर पे है। ऐसा निजाम कहीं नहीं है सारी दुनिया में, और ये सारा निजाम हमारी बॉडी के साथ लगता है। हमारी जो बदन है इसके अंदर बहुत अच्छा इंतजाम है। मैं आज आपको ऐसी चीजें बता रहा हूं कि जो नॉर्मली आप जानते तो है लेकिन कभी सोचा नहीं। देखो ये बॉडी के निजाम हमारे ज्ञान भरे हुए हैं इससे। अल्लाह के कलाम में भी हमारी बायोलॉजिकल साइड जो है उसका बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन है। आदमी किस तरह पैदा होता है, खुदा ताला ने कुरान में इस तरह किया है कि एक साइंटिस्ट आज कमाल का ख्याल करते हैं उसके लिए। आदमी पैदा होने से 5 महीने पहले हार्ट की बीटिंग शुरू होती है उसमें। मां के पेट में 4 महीने तक वो बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है, लेकिन 4 महीने के बाद हार्ट की बीटिंग शुरू होती है। देखो खुदा ताला की कमालियत कि ये छोटा सा गोश्त का लोथड़ा खुद ब खुद पंपिंग करता है, सारा दिन काम करता है, सारी रात काम करता है, आदमी सो जाता है तो भी काम करता है, हाथ पांव सब सो जाते हैं, आंखें सो जाती हैं, अंदर बाहर के तमाम जितने ऑर्गन्स हैं सो जाते हैं, लेकिन हार्ट काम करता रहता है। पैदा होने से 5 महीने पहले से काम शुरू करता है और मौत तक चलता है। खुदा ताला की बनाई हुई चीजों की स्टडी करना इबादत है, ताकि इंसान को पता चले कि खुदा ने क्या बनाया है और उस परवरदगार का शुक्राना अदा करके उसकी फरमान बरदारी में रह के उसको खुश किया जाए। ये जो हार्ट है, ये इंसान की खुशी और गमी में दोनों में साथ देता है। जब ये आदमी बहुत खुश होता है तो हार्ट की बीटिंग फास्ट हो जाती है, जब आदमी गमगीन हो जाता है तो हार्ट भी गमगीन हो जाता है। हमारा खून, हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग, जो कुछ भी हमारे बॉडी के अंदर खुदा ने रखा है, हर चीज एक निजाम के साथ चलते हैं। ये निजाम हमें अपनी जिंदगी के बाहर भी करना चाहिए। वक्त पे उठो, वक्त पे सो, ऐसा खाना खाओ कि बीमार न पड़ो। रसूल पाक फरमाया, 3 रोटियां खा सकते हो तो 2 खाया करो, मतलब कि 1/3 अपने स्टोमक को खाली रखो, कभी बीमार नहीं पड़ोगे। नबी फरमाया कि जितनी बीमारियां हैं पेट से निकलती हैं, ओवर ईटिंग से बीमारियां पैदा होती हैं, एसिडिटी होती है, कोलेस्ट्रॉल होती है, फैट होती है। अगर हम मजहब की हालत से अपनी जिंदगी गुजारे, हो सकता है कि आप मिलियनर नहीं बनोगे, हो सकता है कि बहुत 1-2 करोड़ का मकान शायद न ले सको, लेकिन सुख की जिंदगी मिलेगी। सुख की रोटी खाओ, आधी खाओ भले, और मार धाड़ की हुई कमाई की एक सारी रोटी घी से नुचड़ी हुई, उससे आधी रोटी रूखी अच्छी। इंसान मगरूर न बने, इंसान को बदी करनी न पड़े, चोरी करनी न पड़े, फरेब करना न पड़े, आसानी की जिंदगी गुजार। मालदार उसके दिल के अंदर रहम नहीं होता। अल्लाह ताला कहता है कि इन अकरमकुम इंदल्लाह इत्तकाकुम, तुम्हारे अंदर इज्जत वाला वो है खुदा की नजर में कि जिसके आमाल अच्छे हैं। खुदा ने नहीं कहा इतनी नमाजें पढ़ने वाला ऊंचा है, नहीं, आमाल अच्छे हैं, कैरेक्टर अच्छा है, झूठ नहीं बोलता, फरेब नहीं करता, हसद नहीं करता, चोरी नहीं करता, ऐसी बदियां नहीं करता, मगर जिंदगी उसकी आसान है, गरीब है, खुदा के नजदीक प्यारा है। मालदार बनने की कोशिश मत करो। अगर खुदा को मालदार बनाना है तो एक आंख की पलक जितना उसको मौला को लगे वो देना चाहे तो सब कुछ दे देगा, और लेना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता। और याद रखो, खुदा ताला की आदत का जिक्र फारसी जबान की एक कहावत है, शोबे खुदा आवाज न दारत, खुदा की लकड़ी में आवाज नहीं है, अगर बिजन दवा न दारत, अगर खुदा की लकड़ी किसी को लगती है तो उसकी दवा नहीं है, इसलिए उसकी लकड़ी से डरो। चौबे खुदा आवाज न दारत, अगर बिजन दवा न दारत। मजहब हमारा बहुत अच्छा है, हमारा मौला हमें कहता है दुनिया में भी आगे बढ़ो, दीन में भी आगे बढ़ो, लेकिन लालच दुनिया का नहीं होना चाहिए। दुनिया दीन दोनों को साथ रखो, ऐसा न करना कि दुनिया बिगाड़ के दीन करो, और ऐसा भी नहीं चाहिए कि दुनिया की खातिर दीन बिगड़ जाए, दुनिया और दीन में बैलेंस पैदा करो, तवाजुन रखो। और ये तवाजुन हमको हमारे फरमानों में मौला के और पीरों के गिनानों में हमें मिलता है। वाज़ सुना करो, अच्छी किताबें पढ़ा करो, अपने मजहब की स्टडी करो कि हम न्याज पीते हैं क्या मकसद है, जुरा खाते हैं तो क्या मकसद है। हमारे मजहब की जितनी भी चीजें हैं कुरान हदीस में से मौजूद हैं। ऐ मोमिनो, कभी कभी किसी जवान को कोई उसका दोस्त पूछता है कि तुम इस्माइली लोग मुसलमान नहीं, भाई क्यों नमाज नहीं पढ़ते? मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते, पांच वक्त के नमाजी तो 5% भी नहीं है, ये सब घूमते फिरते रहते हैं, कोई कोई है नमाज पढ़ने वाला। और फिर 5 नमाजों में 17 रकात हैं, सुबह जोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज, ईशा की नमाज, 5 नमाजों को मिलाओ तो टोटल 17 रकातें होती है। हमारी दुआ हम 3 वक्त पढ़ते हैं, सुबह मगरिब और ईशा में, और हमारी नमाज में 18 रकातें हैं। 5 वक्त की नमाज पढ़े तो 17 रकातें होंगे, हम 3 वक्त की नमाज में 18 रकातें पढ़ते हैं। हर मुसलमान से हर इस्माइली 1 रकात ज्यादा पढ़ता है। और हमारे जमात खानों के अंदर छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, जवान आते हैं, औरतें मर्द आते हैं, बीमार आते हैं, बूढ़े आते हैं, ये हाल मस्जिदों में नहीं है। मस्जिदों में जाने वाले कोई कोई, मस्जिदों में बच्चे नजर नहीं आते। लकड़ी लेके चलने वाले इस्माइली भाई बहने जमात खाने में आते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि कोई लकड़ी लेके कोई बूढ़ा या बूढ़ी मस्जिद में गई हो गए। हमारे मजहब की हालत, हमारे जमात की हालत अगर ख्याल करोगे तो हमारे जमात जैसा, हमारे मजहब जैसा कोई तरीका नहीं है। हमको ऐसी ऐसी सहूलतें दी गई हैं हमारे इमाम की तरफ से। अल्लाह ताला ने 112 जगह नमाज को, सलाह को जिक्र किया है, और हर जगह सलाह और जकात, सलाह और जकात, वाकिब सलाह व आतु जकात, जकात और सलात को साथ रखा, क्योंकि इन दो चीजों का ऑप्शन नहीं है, ये पढ़ने ही चाहिए और दसवन देने ही चाहिए। हम इस्माइली जितनी दसवन देते हैं मुसलमान नहीं देते, जकात तो देते ही नहीं। हम तो दसवन देते हैं 8 में से 1, और वो 100 में से 2.5, और वो भी अच्छी तरह नहीं देते। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हालत ऐसी है कि 4 बरस हुए कि 5 बरस एक नया इदारा प्रेसिडेंट ने खोला है, जकात का इदारा, के लोग हुकूमत को जकात दे रहे। हमारा हाल जुदा है, हम हुकूमत को टैक्स देते हैं, जकात इमाम को देते हैं। और खुदा ताला ने खुम्स का जिक्र किया है कि अगर तुम्हें 100 रुपए मिलते हैं तो उसमें से 20 रुपए अलग करो, 80 रुपए तुम खाओ पियो तो 20 रुपए अल्लाह कहता है उश्र, अल्लाह 10% उश्र है, 2.5% जकात है कि जो मजहब की इशायत के लिए है, गरीबों के लिए नहीं। मसाकीन और फोकरा को जो जकात देते हैं ये गलत है, خدا کہتا ہے کہ یہ دین کی اشاعت کے لیے ہے، نبی کو لو. تو ہم 10 اور 2.5 12% دیتے ہیں، اور باقی اللہ کہتا ہے 7.5% جو ہے اس میں سے غریبوں کی مدد کرو، اپنے رشتہ داروں کی مدد کرو، اپنے پڑوسیوں کی مدد کرو، اگر کوئی نہیں ملتا تو رفع عام میں خرچ کرو. ہر مسلمان کو 100 میں سے 20 روپے اس طرح خرچ کرنے کا حکم ہے، جو مسلمانوں میں نہیں ہے، ہمارے ہاں ہے. اے مومنوں، ہم حضر ایمان کو جو دسون دیتے ہیں یہ اس کو اللہ رسول کا حق سمجھ کے دیتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ پتہ ہے ہمیں 7.5% دینے چاہیے، اور ہماری جماعت میں کئی قسم کے فنڈ پیدا ہوتے ہیں، اور ان فنڈوں میں اور فنڈ فاڑے میں جماعت خانے کے لیے، چٹائیوں کے لیے، الیکٹرک کے لیے، کسی اور چیز کے لیے ہم جو فنڈ فاڑا کرتے ہیں، ہماری جماعت سب سے ٹاپ پہ ہے. آج الگ الگ نام سے جو ادارے مولا نے پیدا کیے ہیں، ہم اس مالی لوگ ان میں خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو بخل کرتا ہے نا کنجوس، خدا نے ایک جگہ اس کو دشمن کہا ہے، البخیل و عدو اللہ، جو بخیل ہے وہ خدا کا دشمن ہے، کیونکہ خدا نے اس کو مال دیا ہے اور وہ خرچ کھاتا نہیں، خود بھی نہیں کھاتا، کسی کو کھانے نہیں دیتا. ہم بخیل نہیں ہیں، ہم سخی ہیں. اس قسم کے بہت سے فنڈ فاڑے ہماری جماعت میں جاری ہے، اور پھر ہم دشمن بھی دیتے ہیں. ہماری قوم ایک زندہ قوم ہے، آباد قوم ہے، ہمارے اوپر ایک حاکم بیٹھا ہے جو ہمارے تنازعات کو فیصلہ دیتا ہے. مولا ہمارا مالک ہے، دین و دنیا میں ہمیں وہ ہدایت کرتا ہے. 200 برس کی اسماعیلی ہسٹری دیکھو، ساری دنیا کے اندر اسماعیلی اوپر آ رہے ہیں. اے مومنو، میں نے بسا اوقات اپنی آوازوں میں کہا ہے، خدا کے فضل سے میں دنیا میں بہت گھوما ہوں اور ساری زندگی گھومتا رہا ہوں، میں نے کہیں بھی ایک اسماعیلی کو بھیک مانگتے نہیں دیکھا. سنی بھیک مانگنے والا ہے، شیعہ ہے، سب طرح کے لوگ ہیں، کرسچن ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، بدھسٹ ہیں، ساری دنیا میں الگ الگ جگہوں پہ بھیک مانگنے والے ہر قوم میں ہیں، ایک اسماعیلی کہیں بھیک نہیں مانگتا. در رستے پہ بیٹھا ہوئے اللہ کے نام پہ کچھ دو، کوئی اسماعیلی ایسا نہیں کرے گا. یہ ایک جیتا ثبوت ہے ہمارے لیے کہ حضرت امام کی اس جماعت کے اندر ایک بھی ایسا شخص نہیں کہ رستے پہ بیٹھ کے بھیک مانگتا ہوئے. یہ اس کی رحمتیں اور برکتیں ہیں، ہمیں الہی مدد ملتی ہے، حضرت امام کی دعا آسیس ملتی ہے. اس لیے دینداروں، اپنے مذہب کو سمجھو اور اچھی طرح اس پہ عمل کرو. اپنے مذہب میں ہی رہو، اپنے مذہب کے ساتھ ہی رہو، اپنی جماعت کے اندر رہو، اپنی جماعت کے ساتھ رہو، اور جتنا بن سکے جماعت کی مذہب کی خدمت کرو. ہمارے اوپر یہ فرض ہے اور یہ چیز عبادت میں داخل ہے. میں بہت لمبی وعظ کر کے آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا زیادہ، لیکن میں نظام کی بات کرتا تھا. ہمارے مذہب کا نظام ہے، جماعت اس کو کہتے ہیں کہ جو بہت سے لوگوں کا ایک گروپ ہوئے، انگلش میں کہتے ہیں کانگریگیشن، اسمبلی. لیکن ہماری جماعت میں ایک اور لفظ ہے گت. گت کا مطلب یہ ہے پروٹیکشن والی جگہ، کہ جہاں جا کے ہمیں خدا تعالیٰ کی طرف سے پروٹیکشن ملے. اس لیے गत के लिए ये लाजिम है कि मुखी कांवड़िया होने चाहिए। अगर मुखी कांवड़िया नहीं है तो वो जगह गत, वो जमात गत नहीं है, और अगर जमात नहीं है तो मुखी कांवड़िया खाली बैठे हैं तो वो गत नहीं। ये दोनों साथ होने चाहिए। मुखी इमाम का रिप्रेजेंटेटिव है, कांवड़िया पीर का रिप्रेजेंटेटिव है। इसी तरह से मुखियानी और कांवड़ियानी, मुखी के मुंह से निकलता है खाना वादा, वो इमाम के मुंह से निकलता है। मुखी के कमड़िया, मौलाना सुल्तान मौसी फरमाया मेरे वकील हैं, मुखी मेरा राइट हैंड है, कमड़िया मेरा लेफ्ट हैंड है। जमात के अंदर मुखी कमड़िया का हुक्म मानो, वो इमाम की मसनद पे बैठे हैं, उनके हुक्म से अमर से मजहबी काम काज होते हैं। मौला ने अपना अमर मुखी कमड़िया को दिया। निजाम हमारा देखो, जो दुआ पढ़ाने बैठता है तो वो पूछा करता है, हमारे मुखी साहब अमर हाजर इमाम, यानी हुक्म हाजर इमाम का। तो उस वक्त मुखी भी वो दुआ पढ़ाने वाले के पीछे सजदा करता है, वो उठाता है, उसको फॉलो करता है। कैसा हमारा निजाम है, जैसे ही दुआ पूरी होती तो ये अमर वापस मुखी के पास चले जाता है। मुखी कांवड़िया की बहुत इज्जत करो क्योंकि वह हज़रत इमाम के वकील हैं। ये निजाम की बात करता हूं। हमारे यहां वॉलंटियर्स हैं जो जमात की छोटी बड़ा खिदमत करते रहते हैं। हमारी जमात के अंदर ये जो वॉलंटियरिज्म है, खिदमत करना, ये मजहब का हिस्सा है और ये बहुत बड़ी चीज है। हमारी इबादात में से वो खामी रह जाती है तो जमात की खिदमत करने से वो खामी पूरी होती है। खिदमत का दर्जा इबादत का दर्जा है, लेकिन इबादत न की जाए और खिदमत की जाए तो वो मंजूर नहीं है। खिदमत के साथ इबादत होनी चाहिए। ये हमारे जमात का स्ट्रक्चर और निजाम की बात की है। इसलिए ऐ मोमिनो, जमात के साथ रहो, जमात का सामना कभी नहीं करना, जमात के खिलाफ कभी नहीं जाना, जमात के खिलाफ कभी बातें नहीं करना, क्योंकि जो जमात है, नबी फरमाते हैं कि इन अल्लाह माउ जमात, खुदा जमात के साथ है। जमात एक बदन है और वो इमाम का बदन है। जमात में जिस तरह नूर है, वो इमाम का नूर है। और जमात मिलके जब बैठ के इबादत करती है तो उसमें सबको उसका हिस्सा मिलता है। मैं एक मिसाल देनी चाहता हूं। एक महीने का बच्चा माँ की गोद में सोया है, जमात खाने आई है, दुआ करके बैठ गई। अभी दुआ पढ़ी जाती है, उसकी गोद में बच्चा सोया है। ऐ मोमिनो, क्या पता ये बच्चे की वजह से सारी जमात की दुआ कबूल होती है, क्योंकि इसका जो जीव है बहुत ऊंचा किस्म का है, उम्र का कोई तकाजा नहीं। एक दिन का बच्चा भी बहुत आला दर्जे का है रूहानी हालत में, अगरचे वो बच्चा है, लेकिन उसका जो दर्जा है ऐसा है कि अगर उसकी वजह से वास्ते से दुआ मांगी जाए तो सारी जमात की दुआ कबूल होती है। इसलिए जमात में आने से हमें फायदा यह है कि मेरे से ऊंचे जो लोग इबादत वाले हैं उनके साथ मिलके नमाज दुआ पढ़ता हूं तो मुझे फायदा मिलता है। मैं अकेले पढ़ूं तो मेरा चेक कबूल नहीं हो है, लेकिन सारी जमात के साथ अगर मैं पढ़ूं तो मेरी आरजू भी उसके जमात की वजह से कबूल हो है। इसलिए ये जरूरी है कि जमात खाने के अंदर आओ, मिलके इबादत करो। मौला आपके कार रोजगार में बरकत देवे, मौला आपको दस बंदी बनावे, सुकृत नेक माल में पूरा करे, बदियों बुराइयों से दूर रखे। आपके ईमान में बरकत देवे, रोजी कमानी में बरकत देवे, सेहत और तंदुरुस्ती में बरकत देवे। मौला भलाए आफत दूर करे, दुश्मन दूर करे। मौला आपके फैमिलीज में, जमातों के अंदर खुशियां बरकतें, इत्तेफाक को मोहब्बत देवे, नेक उम्मीदें पूरी करे, बदियों बुराइयों से, गुनाहों से, नाफरमानी से बचावे। सुखी आबाद रहो। शुक्रिया।
کان اودان بولن حاضری ما ایمان دیدان نصیب کن.